एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, कार्बन कैप्चर।
नमस्कार।
और इसके लिए हम हार्वर्ड जे हर्ज़ोग की किताब कार्बन कैप्चर को अपना आधार बनाएंगे।
हाँ बिल्कुल। और ये विषय आजकल बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की चिंता बढ़ रही है, हम सब लोग इसके क्या कहते हैं हल ढूंढ रहे हैं।
हाँ
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मतलब CCS इन्हीं में से एक है। पर हाँ, इस पर बहस भी बहुत होती है। ये है क्या असल में, काम कैसे करता है, क्या ये वाकई हमारी मदद कर सकता है या सिर्फ ध्यान बटाने वाली बात है। हर्ज़ोग की किताब इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है काफी अच्छे से।
हाँ, और हर्ज़ोग बड़ा साफ कहते हैं, देखो भाई, CCS कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि घुमाई और सारी CO2 गायब।
बिल्कुल।
लेकिन ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के हमारे जो तरीके हैं, उनमें एक जरूरी टूल जरूर है, खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए जैसे सीमेंट है, स्टील है,
हाँ
जहां से कार्बन उत्सर्जन कम करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज हम इसी किताब के सहारे CCS की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे।
बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं लेखक से। हॉवर्ड जे हर्ज़ोग हैं कौन?
हाँ बताइए।
तो ये MIT एनर्जी इनिशिएटिव में सीनियर रिसर्च इंजीनियर हैं और पिछले मतलब कई दशकों से कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यानी CCS के फील्ड में दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं।
MIT से जुड़े हैं, मतलब लेटेस्ट रिसर्च वगैरह से पूरी तरह वाकिफ होंगे।
बिल्कुल। और उनकी खास बात यह भी है कि वो सिर्फ लैब में नहीं बैठे रहते, उन्होंने दुनिया भर में जो असली CCS प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना,
हाँ
उनका विश्लेषण किया है, उनकी असलियत को समझा है और IPCC जैसी जो बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं
हाँ हाँ
उनके लिए भी काम किया है। तो उनके एनालिसिस में एक प्रैक्टिकल गहराई है, वो थियोरी और प्रैक्टिस दोनों समझते हैं।
सही बात है। और शायद सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो ये कि उनका नजरिया बहुत बैलेंस्ड है।
हाँ ये बहुत जरूरी है।
वो ना तो इसके अंधे समर्थक है, ना ही एकदम कट्टरालोचक। वो एक वैज्ञानिक की तरह, मतलब सबूतों के आधार पर बात करते हैं। देखो, ये फायदे हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ये चुनौतियां हैं।
बिल्कुल। आजकल जहां हर चीज में पोलराइजेशन दिखता है, ऐसा बैलेंस्ड व्यू मिलना मुश्किल है।
हाँ, और मुश्किल इंजीनियरिंग को भी आसान भाषा में समझाते हैं, ये भी बड़ी बात है।
हाँ ये किताब इसीलिए खास है। अच्छा, आप किताब पर आते हैं। ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है
अच्छा,
और इस सीरीज का मकसद ही यही है कि मुश्किल टॉपिक्स को छोटा और आसान करके पेश किया जाए। तो ये किताब CS की टेक्नोलॉजी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी सब पर एक छोटी मगर बहुत काम की जानकारी देती है।
तो इसका मेन पॉइंट क्या है, किताब का सेंट्रल आइडिया?
किताब का जो मेन तर्क है वो ये कि क्लाइमेट चेंज से निपटने की हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, उसमें CCS एक अपरिहार्य हिस्सा है। मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा शायद।
अच्छा, इनएस्केपेबल।
हाँ, इनएस्केपेबल कह सकते हैं। हर्ज़ोग ये नहीं कहते कि अकेले CCS सब ठीक कर देगा, लेकिन वो जोर देते हैं कि कुछ खास सेक्टर्स के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसे सीमेंट, स्टील, केमिकल इंडस्ट्री और यहां तक कि जो कोयले या गैस से बिजली बनती है उसका कार्बन कम करने के लिए भी। इन जगहों पर एमिशन कम करने के दूसरे तरीके या तो बहुत महंगे हैं या फिर अभी टेक्नोलॉजी उतनी है नहीं।
बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात जो हर्ज़ोग कहते हैं वो ये है कि CCS को बड़े स्केल पर अपनाने में असली रुकावट टेक्नोलॉजी नहीं है।
अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी तो काफी हद तक तैयार है, काम भी करती है। असली प्रॉब्लम है पैसा, पॉलिटिक्स और लोगों की सोच। ये किताब समझाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड, उनके साथ साथ CCS क्यों जरूरी है, ये या वो वाला मामला नहीं है।
ये और वो वाला मामला है।
हाँ, ये और वो वाला मामला है, और कुछ सेक्टर्स के लिए तो ये ऑप्शन भी नहीं, जरूरत है।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के। पहला हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि भाई हमें CO2 कम करने की जरूरत ही क्यों है।
हाँ, बेसिक्स।
हाँ, हर्ज़ोग कार्बन बजट समझाते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमें मान लीजिए 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक रोकना है तो हम और कितना कार्बन छोड़ सकते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी इस बजट में रहने के लिए काफी क्यों नहीं है।
हाँ, और वो दो खास एरिया बताते हैं जहाँ CCS की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पहला है भारी उद्योग, मतलब इंडस्ट्रियल एमिशन,
जैसे
सीमेंट। सीमेंट बनता है चूना पत्थर गर्म करके, इस प्रोसेस में CO2 निकलती ही है, ये केमिकल रिएक्शन है। आप चाहे कोयले से गर्म करो या सोलर से, CO2 तो निकलेगी।
अच्छा, मतलब एनर्जी सोर्स बदलने से भी फर्क नहीं पड़ेगा।
पूरा नहीं, इसी तरह स्टील बनाने में, केमिकल्स बनाने में भी होता है। इन इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बिजली पर चलाना या तो मुमकिन नहीं या बहुत बहुत महंगा है। तो यहाँ CCS इन प्रोसेस एमिशंस को पकड़ने का एक तरीका देता है।
समझ गया। और दूसरा एरिया?
दूसरा है जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, मतलब फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन। देखो, मानना पड़ेगा कि दुनिया और खासकर भारत जैसे देश अभी कई दशकों तक कोयले और गैस पर निर्भर रहेंगे।
हाँ, ये तो सच्चाई है, एनर्जी की जरूरतें बढ़ रही हैं।
बिल्कुल। तो ऐसे में CCS एक तरीका हो सकता है जिससे मौजूदा पावर प्लांट और जो नए बनेंगे उनसे CO2 एमिशन कम किया जा सके। ये एक तरह का ब्रिज बन सकता है जब तक हम पूरी तरह रिन्यूएबल पर नहीं चले जाते।
तो फिर वही बात आ गई, रिन्यूएबल और CCS।
एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये तो हुई जरूरत की बात, पर ये होता कैसे है, मतलब CO2 पकड़ी कैसे जाती है? हर्ट्ज़ोग 3 मेन टेक्निक बताते हैं, कोशिश करते हैं आसान रखने की।
हाँ, बताइए।
पहला है पोस्ट कम्बशन, मतलब ईंधन जलने के बाद, जैसे फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकला, उस पर एक तरह का फिल्टर लगा दिया जो CO2 सोख ले।
अच्छा।
ये सबसे कॉमन तरीका है। मौजूदा प्लांट्स में लगाना भी आसान है, पर इसमें एनर्जी काफी लगती है, मतलब प्लांट की अपनी बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसे एनर्जी पेनल्टी कहते हैं।
मतलब खर्चा बढ़ जाता है।
दूसरा है प्री कम्बशन, मतलब ईंधन जलाने से पहले ही उसमें से कार्बन निकाल लेना। इसमें क्या करते हैं, फ्यूल को जैसे कोयला या गैस पहले हाइड्रोजन और CO2 में बदलते हैं।
ओके।
फिर CO2 को अलग कर लेते हैं और हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह जलाते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, पर इसके लिए नए तरह के प्लांट चाहिए और प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
और तीसरा?
तीसरा है ऑक्सी कम्बशन। इसमें फ्यूल को हवा के बजाय लगभग प्योर ऑक्सीजन में जलाते हैं।
अच्छा, हवा में तो नाइट्रोजन ज्यादा होती है।
हाँ।
तो जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो धुएं में मेनली CO2 और पानी ही होता है। पानी हटाना आसान है तो लगभग प्योर CO2 मिल जाती है, लेकिन
लेकिन
लेकिन हवा से प्योर ऑक्सीजन बनाने में ही बहुत एनर्जी और पैसा लगता है। एयर सेपरेशन यूनिट काफी महंगी होती है।
तो हर तरीके के अपने प्लस माइनस है, कोई एक बेस्ट नहीं है।
नहीं, ये डिपेंड करता है प्लांट कैसा है, कहाँ है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मान लो CO2 पकड़ ली।
हाँ,
अब उसका क्या?
हाँ, उसे कहीं ले जाना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। अगर बहुत सारी CO2 है, मतलब लाखों टन हर साल, तो सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है पाइपलाइन।
पाइपलाइन जैसे गैस की होती है?
हाँ, बिल्कुल वैसी ही। CO2 को बहुत ज्यादा प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं जिससे वो एक गाढ़े लिक्विड जैसी बन जाती है, सुपरक्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। उसे पाइप से भेजना आसान होता है।
अच्छा।
अमेरिका में तो हजारों किलोमीटर CO2 पाइपलाइन पहले से है भी। वो ज्यादातर तेल निकालने, मतलब EOR के लिए यूज होती हैं।
हाँ, सुना है, लेकिन सुरक्षा का क्या, लीक हो गई तो?
हाँ,
सुरक्षा बहुत जरूरी है। CO2 कॉन्सेंट्रेटेड हो तो दम घोट सकती है, इसलिए स्टैंडर्ड्स कड़े होने चाहिए।
और फिर पाइपलाइन से कहाँ जाती है?
फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, परमानेंट स्टोरेज, जिसे सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी खाली गुफा में भर दिया।
हाँ, ऐसा ही लगता है सुनने में।
नहीं, इसे जमीन में बहुत नीचे, करीब 800 मीटर या उससे भी ज्यादा गहराई में इंजेक्ट करते हैं। वहां खास तरह की चट्टाने होती हैं, पोरस रॉक्स, जैसे सैंडस्टोन। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं।
अच्छा।
इन छेदों में CO2 जाके समा जाती है। ये चट्टाने अक्सर खारे पानी से भरी होती हैं, सलाइन एक्वाफर्स, जो पीने लायक नहीं होता, या फिर जो तेल और गैस के पुराने भंडार खाली हो गए, वो भी अच्छी जगह है।
क्यों, वो क्यों अच्छी है?
क्योंकि वो लाखों साल से गैस या तेल को रोक कर रखे हुए थे, मतलब वो सील साबित हो चुके हैं।
हाँ, ये लॉजिकल है। पर क्या ये CO2 हमेशा वहीं रहेगी, लीक नहीं होगी?
ये बड़ा सवाल है। हर्ज़ोग बताते हैं कि CO2 को फंसाए रखने के कई नेचुरल तरीके हैं। एक तो उसके ऊपर एक मजबूत नॉन पोरस चट्टान होती है, जैसे कैप रॉक कहते हैं, वो ढक्कन का काम करती है।
ओके।
फिर कुछ CO2 चट्टान के छेदों में ही फंसी रह जाती है, जैसे स्पंज में पानी। फिर धीरे धीरे वो पानी में घुल जाती है और हजारों सालों में वो चट्टान के साथ मिलकर पत्थर भी बन सकती है। मिनरलाइजेशन, ये सबसे पक्का तरीका है।
अच्छा, मतलब कई लेयर है सिक्योरिटी की।
हाँ, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि CO2 सेफ है। इसके लिए मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन और अकाउंटिंग, MVA, बहुत जरूरी है।
मतलब लगातार नजर रखना।
बिल्कुल, लगातार चेक करना कि CO2 कहाँ जा रही है, कहीं लीक तो नहीं हो रही। नॉर्वे का स्लेपनर प्रोजेक्ट है, वो 1996 से समुद्र के नीचे CO2 स्टोर कर रहा है।
अरे वाह, इतने सालों से।
हाँ, और दशकों की मॉनिटरिंग से पता चला है कि वो सेफ है, तो ये दिखाता है कि ये हो सकता है।
यहाँ तक तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि असली चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं है।
हाँ, बिल्कुल। हर्ज़ोग साफ कहते हैं कि असली चुनौती है पैसा और पॉलिसी। सीसीएस लगाना महंगा है।
कितना महंगा अंदाजन?
ये बिजली की कॉस्ट 50 से 100% तक बढ़ा सकता है। सीमेंट स्टील की कॉस्ट भी काफी बढ़ सकती है।
ओह, फिर तो कोई कंपनी क्यों लगाएगी?
एग्जैक्टली, यही सरकार की भूमिका आती है। जब तक सरकारें मजबूत और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगी, तब तक सीसीएस बड़े स्केल पर नहीं होगा।
पॉलिसी मतलब किस तरह की पॉलिसी?
जैसे कार्बन पर टैक्स लगा दो। अगर CO2 छोड़ना महंगा हो जाए तो उसे पकड़ना फायदेमंद लगने लगेगा।
हाँ, कार्बन प्राइसिंग।
हाँ, या फिर सब्सिडी दो, जैसे अमेरिका में 45Q क्रेडिट है जो CO2 स्टोर करने पर पैसे देता है। या फिर नियम बना दो कि कुछ इंडस्ट्रीज को अपना एमिशन कम करना ही पड़ेगा, जिसके लिए शायद CCS जरूरी हो जाए।
लेकिन ये नीतियाँ टिकाऊ होनी चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि आज है कल बदल जाए।
बिल्कुल, यही हर्ज़ोग का पॉइंट है। कंपनियों को अरबों डॉलर लगाने हैं, उन्हें भरोसा चाहिए कि पॉलिसी 10-20 साल तक तो चलेगी।
सही बात है। अच्छा, किताब में आगे की टेक्नोलॉजी पर भी बात है?
हाँ, थोड़ी बात है। एक है डायरेक्ट एयर कैप्चर, DAC।
ये क्या है?
ये सीधे हवा से CO2 खींचने की टेक्नोलॉजी है। सोचिए, हवा में CO2 वैसे ही बहुत कम है।
हाँ, 0.04% के करीब।
हाँ, तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल और महंगा है। लेकिन शायद भविष्य में इसकी जरूरत पड़े, जो CO2 हम पहले ही छोड़ चुके हैं उसे हटाने के लिए।
एक तरह की सफाई।
हाँ, हर्ज़ोग कहते हैं DAC आज वही है जहां सोलर एनर्जी कुछ दशक पहले थी। महंगी, पर इनोवेशन और सही पॉलिसी से सस्ती हो सकती है।
और BCs का भी जिक्र है शायद।
हाँ, BCCS, यानी बायो एनर्जी विद CCS। इसमें क्या है कि पहले पेड़ पौधे उगाओ, वो हवा से CO2 लेंगे, फिर उन्हें जलाकर एनर्जी बनाओ, और जलने से जो CO2 निकली उसे कैप्चर करके स्टोर कर दो।
अरे, इसका नतीजा तो नेगेटिव एमिशन हुआ।
बिल्कुल, आप वातावरण से CO2 कम कर रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें चुनौतियां हैं। इसके लिए बहुत सारी जमीन चाहिए, पानी चाहिए, उसका असर खाने की पैदावार पे पड़ सकता है।
हर चीज के दो पहलू हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हर्ज़ोग की किताब से मेन टेकअवेज क्या है?
पहला और सबसे बड़ा तो ये कि CCS जरूरी है, पर यह कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का साथी है, उसका विकल्प नहीं। और खासकर भारी उद्योगों के लिए, जैसे सीमेंट, स्टील, उनके लिए शायद ये बहुत जरूरी है। भारत जैसे देश के लिए ये सोचना जरूरी है।
और दूसरा?
दूसरा, टेक्नोलॉजी तो है पर उसे लागू करना असली चुनौती है। साइंस इंजीनियरिंग तो पता है, पर इसे अरबों टन CO2 के स्केल पर ले जाना, पाइपलाइन बिछाना, स्टोरेज साइट बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत पैसा और मेहनत लगेगी।
तीसरा पॉइंट शायद पैसे और पॉलिसी का है।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बाधा पैसा और नीति है। जब तक CO2 छोड़ना फ्री या सस्ता है, या CCS लगाने का कोई फायदा नहीं है, तब तक कंपनियां क्यों करेंगी? सरकारों को आगे आना होगा।
चौथा,
सुरक्षा और जनता का भरोसा बहुत अहम है। लोगों को यकीन दिलाना होगा कि ये सुरक्षित हैं। इसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी और लगातार मॉनिटरिंग, MVA जरूरी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं, समाज का भी है।
और पांचवा,
हमें सभी समाधानों को साथ लेकर चलना होगा। एक पोर्टफोलियो अप्रोच चाहिए। क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई एक चीज इसे ठीक नहीं कर सकती। रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, न्यूक्लियर, CCS, सबको मिलाकर इस्तेमाल करना होगा।
भारत के लिए ये बात और भी सही लगती है, जहां हमें विकास भी चाहिए और पर्यावरण भी बचाना है।
बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ा चैलेंज है।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे हर्ज़ोग का एक पॉइंट है कि बहस इस पर मत करो कि टेक्नोलॉजी काम करती है या नहीं, वो तो करती है।
हाँ।
असली सवाल ये है कि इसका खर्चा कौन उठाएगा और इसे बड़े स्केल पर लागू करने के लिए पॉलिटिकल विल कैसे बनेगी।
बात सही पॉइंट है। एक और बात वो कहते हैं कि CCS को नकारना मतलब स्टील, सीमेंट जैसी इंडस्ट्री के एमिशन को नजरअंदाज करना है। और अगर हमें सच में नेट जीरो पर पहुंचना है तो इन इंडस्ट्रीज का एमिशन कम करना ही होगा, और CCS उसके लिए एक जरूरी रास्ता दिखता है। शायद इसके बिना नेट जीरो बहुत मुश्किल होगा।
और वो जो जमीन के नीचे स्टोर करने वाली बात है?
हाँ, वो समझाते हैं कि ये कोई अनोखी या खतरनाक चीज नहीं है। प्रकृति ने लाखों सालों से तेल और गैस को ऐसे ही स्टोर किया है। हमें बस उन्हीं नेचुरल प्रोसेस को समझकर सावधानी से इस्तेमाल करना है।
और डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC वाली बात भी सोचने वाली है।
हाँ, कि आज महंगा है पर कल जरूरी हो सकता है। जैसे आज हम पानी साफ करने पर खर्च करते हैं, कल शायद हवा साफ करने पर भी करना पड़े। ये सब बातें हमें मतलब प्रैक्टिकल होने को कहती हैं।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या बड़े लेवल पर क्या मतलब निकलता है?
देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब है। सरकारों के लिए ये किताब पॉलिसी बनाने में गाइड कर सकती है। कार्बन प्राइसिंग, सब्सिडी, स्टोरेज के नियम, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर सोचना होगा। इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट, स्टील, पावर सेक्टर के लिए ये डीकार्बनाइजेशन का एक रास्ता है, और हब मॉडल से शायद कॉस्ट कम हो सकती है जहां कई इंडस्ट्री मिलकर CCS फैसिलिटी यूज करें।
इन्वेस्टर्स के लिए,
पैसा लगाने वालों को सबसे ज्यादा स्टेबल पॉलिसी चाहिए। रिस्क यहाँ टेक्नोलॉजी से ज्यादा पॉलिटिकल है।
और हम जैसे आम लोगों के लिए,
हमारे लिए ये है कि हम सिर्फ हाँ या ना में ना सोचें, हम सवाल पूछें। अगर कहीं CCS प्रोजेक्ट लग रहा है तो पूछें, सुरक्षा कैसी है, मॉनिटरिंग कौन करेगा, लोकल लोगों पर क्या असर होगा, और हम एक ऐसी क्लाइमेट पॉलिसी की मांग करें जिसमें सभी जरूरी उपायों का इस्तेमाल हो।
भारत के बारे में सोचें तो ये और भी रेलेवेंट लगता है। हमें इंडस्ट्री बढ़ानी है, नौकरियां बनानी है, एनर्जी भी चाहिए और क्लाइमेट गोल्स भी पूरे करने हैं।
हाँ, ये बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। CCS इसमें एक रोल निभा सकता है, खासकर हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में, लेकिन शर्त यही है, सही प्लानिंग, पॉलिसी और सेफ्टी मेजर्स के साथ।
मेरे लिए इस किताब और हमारी बातचीत से सबसे बड़ा सबक ये है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में हमें कोई भी टूल सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो परफेक्ट नहीं है। हमें प्रैक्टिकल होना होगा। कोई एक मैजिक बुलेट नहीं है। हमें अपने पास जो भी साधन है उनका समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। CCS भी उनमें से एक है, खासकर उन मुश्किल सेक्टर्स के लिए।
और मेरे लिए सबसे अहम बात ये निकल कर आई कि कार्बन कैप्चर का भविष्य अब टेक्नोलॉजी से ज्यादा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स पर टिका है। इंजीनियरों ने अपना काम काफी हद तक कर दिया है, अब गेंद पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और हम सब के पाले में है। क्या हम इसे अपनाने के लिए जरूरी माहौल बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हॉवर्ड हर्ज़ोग की ये किताब इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एक बहुत ही क्लियर, बैलेंस्ड और जरूरी नजरिया देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।